तूफान से पहले की शांति। दादाजी के कड़वे शब्द सुनकर वसुंधरा को कोई गुस्सा नहीं आया था। उसने दादाजी को बड़े ही शांति से जवाब देते हुए कहा, देखिए, अब अरमान ने मुझे माफ़ किया है या ना किया है, इस बात से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल ये बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, अब आगे? वही नानी माँ, जिनकी जुबान जो कि मुँह में ही रुक गई थी, वसुंधरा का अंदाज देखकर वो उसे थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, जाओ जाकर रौनक बेतिया के लिए कुछ पका कर लेकर आओ। अब ये शब्द सुनते ही वसुंधरा अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी और नानी माँ की खिल्ली उड़ाते हुए बोली, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि मैं किचन में जाकर कुछ बनाकर लेकर आऊँगी? नो नेवर, जाओ माँ, जाकर खुद बनाकर ले आओ, समझे आप? इतना कहकर वसुंधरा अपने नखरीले अंदाज में सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं वसुंधरा का ये अजीब अंदाज देखकर सबकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वहीं आस्था का ध्यान इस वक्त सिर्फ सीढ़ियों से होते हुए अरमान के कमरे की ओर ही जा रहा था। उसने अरमान को एक घंटे के लिए मोनालिसा के साथ अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसके साथ चार चार आदमी भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी आस्था को कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा था। वो जल्दी से अरमान के पास जाकर उसे देखना चाहती थी। फिलहाल वसुंधरा का अंदाज देखकर रौनक तुरंत ही बोल पड़ी, ये सब क्या हो रहा है? ये वसुंधरा आंटी को क्या हो गया? इनका तो चाल ढाल पूरे ही बदल गए। अरमान भाई ने इनसे एक बार अच्छे से बात क्या कर ली, ये इतना ज़्यादा बदल गई? कहीं इनका दिमागी संतुलन तो बिगड़ नहीं गया ना? वहीं राधिका और वंशिका भी रौनक की इस बात में हाँ में हाँ मिलाने लगी थीं और अपना अंदेशा जाहिर करते हुए बोली, कहीं अरमान भाई की हालत के पीछे इसका ही तो हाथ नहीं है? कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में उलझने बढ़ती चली जा रही थीं और सब इस बात को समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है। तभी रौनक अपने पेट पर एक बार फिर हाथ फिराते हुए बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। वसुंधरा आंटी ने तो साफ साफ खाना बनाने से मना कर दिया। एक काम करते हैं, उनके बेटे वीर को बुलाकर उसी से ही बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। रौनक की कही गई बात सभी को ठीक लगी, क्योंकि अभी किसी की भी ऐसी हालत नहीं थी कि इस सिचुएशन में कोई किचन में जाकर काम कर सके या कुछ बना सके। हालांकि आस्था ने बोला भी था कि वो जाकर रौनक के लिए कुछ बना देगी, लेकिन रौनक ने उसे साफ मना कर दिया था कि उसका इस वक्त घर का खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, वो बाहर का ही कुछ खाना चाहती है। उसकी इस बात पर आस्था भी शांत हो गई। तब देर न करते हुए दादाजी ने वीर को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही वीर सूट बूट में वहां सबके सामने आया तो उसे देखकर सब लोगों की हैरानी एकदम से बढ़ गई। वो सब आश्चर्य से सोचने लगे, चलो वसुंधरा का तो समझ में आता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन इस वीर को क्या हुआ है? ये इस तरह से सूट में कैसे आ सकता है? अभिमान जी भी वीर को ऐसे सूट बूट में देखकर थोड़े चौंक गए। वो गुस्सा दबाते हुए कड़क आवाज में बोले, एक काम करो, जाकर रौनक बिटिया के लिए कुछ बाहर से पिज्जा बर्गर वगैरह ले आओ, उनको बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है। जैसे ही अभिमान जी ने ये कहा तो वैसे ही वीर ने बड़े ही एटीट्यूड में जवाब दिया, देखिए, मैं किसी का कोई नौकर नहीं हूँ, और अगर किसी को बाहर का कुछ खाना है तो वो जाए और खुद ले आए, या फिर आपके घर में इतने सारे नौकर चाकर मौजूद हैं, किसी को भी भेज दीजिए, अभी इस वक्त मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इतना बोलकर वीर भी घमंड से मुस्कुराते हुए फटाफट वहां से चला गया। वीर की आवाज़ और अंदाज देखकर घर वाले कुछ पल के लिए चुप हो गए। सबके दिमाग में हैरानी और उलझन बढ़ती ही जा रही थी। आखिर नौकरों के भेज से ये लोग मालिकों वाले अंदाज में कैसे आ गए? सभी लोगों के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। एक तो वसुंधरा और वीर का ये बदलता हुआ अजीब व्यवहार, ऊपर से अरमान जो अभी तक होश में नहीं आया था, और अरमान ने आस्था के साथ जो जानलेवा हमला किया था, कहीं ना कहीं ये सारी बातें उनके दिमाग में खटक रही थीं। उनकी आंखों में अरमान को लेकर निराशा के भाव भी थे। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए दादाजी अपना माथा पकड़कर बैठ गए और अगले ही पल बोले, पता नहीं मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई जो इतना सब कुछ हो गया। उसी वक्त आस्था तुरंत उठी और उनका हाथ थामकर अपने सर पर रखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिएगा दादाजी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने पति को कुछ नहीं होने देंगे। जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से छीन कर लाई थी, वैसे ही मैं अपने पति पर आँच नहीं आने दूंगी। तो फिर ये वायरस क्या चीज़ है? आप देखिएगा, बहुत जल्द मैं अपने पति को पहले की तरह ठीक करके रहूंगी। आस्था की बातों में कॉन्फिडेंस साफ साफ झलक रहा था। फिलहाल देर न करते हुए अब आस्था धीरे धीरे अरमान के कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगी। वहीं मोनालिसा, जिसकी नज़रें नींबू लगाते लगाते तब तक अरमान के कमरे में चारों तरफ महंगे महंगे लैपटॉप, फ़ोन के साथ साथ ड्रॉअर में पड़े हुए कैश पर पड़ चुकी थीं, वो अब पूरी तरह से ललचा गई थी। वो अब किसी भी कीमत पर वो सारी चीज़ें हासिल करना चाहती थी। उसके दिमाग में लगातार यही बात चल रही थी कि अरमान ने जिस तरह से उसे ठगी करने से रोका था, तो वो अब अरमान को एक बार अपनी ठगी का शिकार बनाना चाहती थी। जब अरमान ने उसे वक्त रहते पकड़ लिया था, तब से मोनालिसा ने मन ही मन तय कर लिया था कि एक ना एक दिन वो अरमान से अपना बदला लेकर रहेगी। इसीलिए देर ना करते हुए मोनालिसा ने अपने कुछ साथियों को इशारा किया और सभी ने उन बड़े बड़े ठेले लेकर आने शुरू कर दिए। वो ऑलरेडी उसमें कुछ दवाइयाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे, और उन कपड़ों के अंदर ही उन्होंने जल्दी जल्दी फटाफट महंगे लैपटॉप, फ़ोन, इतना ही नहीं अरमान के कमरे में कुछ कैश वगैरह भी रखे हुए थे। वो सारी चीज़ें उठा उठा कर वो सब कुछ रखना शुरू कर दिया। ये सारा नज़ारा देखकर मोनालिसा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि फाइनली उसे अरमान से बदला लेने का मौका मिल चुका था। अरमान की वजह से वो सीधा एक तांत्रिक बन चुकी थी, लेकिन अब वो तांत्रिक बनकर खुश हो रही थी, क्योंकि आज अरमान के घर में इस तरह से लूटपाट करके मानो जैसे मोनालिसा के बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके लिए और सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि अरमान की यादें चली गई थीं, लेकिन मोनालिसा को इस बात का पता नहीं था कि नानी माँ ने उसे ये नहीं बताया था कि अरमान की केवल 2 साल की यादें गई हैं, उसकी पूरी याददाश्त नहीं गई है। और मोनालिसा अरमान से 2 साल पहले नहीं मिली थी, वो अरमान से 5 साल पहले मिली थी। फिलहाल अब धीरे धीरे अरमान को होश आने लगता है। जैसे ही अरमान को होश आया, उसका सर इस वक्त पूरी तरह भारी हो रहा था, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। तो उसने चुपके से मोनालिसा और बाकी सबकी तरफ देखा। अरमान ने नोटिस किया कि इस वक्त मोनालिसा अपने साथियों के साथ मिलकर चुपचाप चोरी कर रही थी। ये सब देखकर अरमान के तन बदन में आग लग गई। उसने मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिरकार उसके आसपास चल क्या रहा है। इसीलिए अरमान जानबूझकर आंखें बंद किए बेहोश होने का दिखावा करता रहा। तब उनमें से एक चेले ने मोनालिसा से पूछा, गुरुजी, ये इंसान तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि जब हम उसके कमरे में चोरी कर रहे थे तो हमने देखा कि एक ड्रॉअर में काफी सारी बंदूकें भी रखी हुई हैं।
अपने चेले के मुंह से ये बात सुनते ही मोनालिसा एक पल के लिए घबरा जाती हैं, फिर वो अपने डर पर काबू करके उसे डांटती हुई बोली, देखो, तुम्हें जितना काम बोला जाए उतना ही करो और घबराओ मत, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। और वैसे भी इसके परिवार वालों को लगता है इसके ऊपर भूत प्रेत या पिशाच का साया है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ भूत प्रेत का नाम लेकर उसके घर वालों को डराकर उलझाना है। वैसे भी हम इसकी कीमती चीजें चुरा चुके हैं, अब बस मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करते जाओ। हम ये नाटक करेंगे कि इसके अंदर भूत प्रेत का साया है, और इसके होश में आने से पहले हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? तुम लोगों से जितना कहा जाए बस उतना करो। और वैसे भी इसके घर वालों ने बताया है कि ये अभी 2 से 3 घंटे तक बेहोश रहने वाला है। ऑलरेडी 2 घंटे बीत चुके हैं, तो हमारे पास 1 और घंटा बचा है, इसलिए इसके उठने से पहले हम अपना काम निपटाकर यहाँ से चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मोनालिसा की ये सारी बातें अरमान बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कि आखिरकार उसके घर वालों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके अंदर भूत प्रेत का साया आ गया है। तभी उसके एक चेले ने मोनालिसा से पूछा, गुरुजी, अगर इस आदमी ने आपको पहचान लिया तो फिर क्या होगा? कुछ देर पहले अरमान को अपने सामने देखने के बाद मोनालिसा सारी बातें अपने भरोसेमंद साथियों को बता चुकी थी, और फिर उसने उन्हीं के साथ मिलकर अरमान के कमरे में जाने की योजना बनाई थी। फिलहाल अपने चेले की इस बात पर मोनालिसा अगले ही पल घमंड से मुस्कुराई और धीमी आवाज में उसे समझाते हुए बोली, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे भी उस बूढ़ी नानी ने मुझे बताया था कि इसकी याददाश्त चली गई है और ये अपना अतीत भूला बैठा है, अपने घर को, अपने परिवार को, यहाँ तक कि अपनी बीवी बच्चों को भी भूला बैठा है। जैसे ही मोनालिसा ने ये कहा तो ये सुनकर अरमान ने तुरंत अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसकर भींच ली। मोनालिसा ने जब ये बात कही कि वो अपनी बीवी बच्चों को भी भूल बैठा है, तो ये शब्द सीधे अरमान के दिल पर लगे थे। ये शब्द सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए थे, उसका दिल बैठ गया। उसके मन में यही सवाल घूम रहे थे, वो किस बच्चे की बात कर रहे हैं, उसकी बीवी बच्चा अचानक से कहाँ से आ गए। तब उसे एक बार फिर मोनालिसा की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, देखो, इसके घर वालों ने कहा है कि हम इसे कुछ भी याद दिला नहीं सकते, अगर इसके दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ेगा तो उसके दिमाग की नस फट सकती है, इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार इसके घर के कीमती सामान को अच्छे से लूट ले, फिर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा, फिलहाल हमारा आधा काम तो हो चुका। वैसे भी बरसों पहले इसने मुझे ठगी करने से रोका था, लेकिन अब इसे लूटकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है मैं बयां नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा हो, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। ये बोलते हुए अचानक मोनालिसा जोर से हंस पड़ी, फिर कुछ सोचते हुए वो एकदम से बोल पड़ी, फटाफट यज्ञ करने की प्रक्रिया शुरू करो, इससे पहले घर का मेंबर कोई यहाँ आ जाए। कोई कुछ करता उससे पहले ही आस्था, जो कि सीढ़ियों पर से आ रही थी, उसने तुरंत बायोमेट्रिक लॉक का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोल दिया और सीधा अंदर आ गई। किसी की आहट महसूस करते ही मोनालिसा चौंकी और अपने एक्सप्रेशंस चेंज करके एकदम से पलट कर बोली, लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम सबको साफ साफ मना किया था कि जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। मोनालिसा की इस बात पर आस्था ने एक नज़र अरमान की ओर चिंता से देखा और परेशान मन से मोनालिसा की तरफ देखते हुए बोली, देखिए, प्लीज़ आप मिस्टर सिंघानिया को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।